योशिया द्वारा लोगों को बाइबल की ओर वापस बुलाने के असफल प्रयास के कुछ वर्षों बाद परमेश्वर ने शत्रुओं द्वारा अपने ही देश को मलबे के ढेर में बदलने की अनुमति दी। बाबुल की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया, बहुत सारे लोग मारे गए और जो बच गए वे या तो अपनी जान बचाने के लिए भाग गए या उन्हें बंदी बना लिया गया और बाबुल में पुनर्वास शिविरों में भेज दिया गया। परंतु परमेश्वर ने अपने लोगों को नहीं छोड़ा और 70 वर्षों के बाद एक छोटा समुदाय शहर के पुनर्निर्माण के लिए वापस आया। 17:19 आनंद अपनी बाइबल में नहिमिया 8 खोले। जिस शहर में परमेश्वर ने अपना नाम रखा था वह सुलगता हुआ एक खंडर बन गया और जहां विश्वासियों के एक समुदाय ने आराधना में अपनी आवाज उठाई थी वहां सन्नाटा छा गया। वह मंदिर जो कभी परमेश्वर की उपस्थिति के बादल से भरा हुआ था पूरी तरह से नष्ट हो गया था। परंतु बाबुल साम्राज्य ने मादियों और फारसियों के बढ़ते साम्राज्य को रास्ता दिया और एक नया राजा साइरस ने यह फरमान दिया कि जो भी निर्वासित यहूदी यरूशलेम लौटने और मंदिर के पुनर्निर्माण की इच्छा रखते हैं वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। लगभग 50,000 लोगों ने चुनौती का जवाब दिया। इतने बड़े कार्य के लिए यह एक छोटा समूह था, परंतु वे मंदिर के पुनर्निर्माण और परमेश्वर के नगर में एक नया समुदाय बनाने के दर्शन से उत्साहित थे। उनका नेता जरुबाबिल नाम का एक निर्माण करता था और उसकी पहली चुनौती घरों के निर्माण की देखरेख करना था। जब उनके पूर्वज प्रतिज्ञात देश में आए तब परमेश्वर ने उन्हें वो घर दिए जिन्हें उन्होंने नहीं बनाया था और दाग की बढ़िया दी जिसे उन्होंने नहीं लगाई थी। परंतु जब निर्वासित लोग वापस लौटे तो उन्हें खुद हर लकड़ी को काटना और हर कील को ठोकना पड़ा। अपने घरों के निर्माण के बाद परमेश्वर के लोगों ने मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ किया। तब परमेश्वर ने एजरा नाम के एक बाइबल के शिक्षक को खड़ा किया। वह मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही। जब एजरा यरूशलेम में आया तो वो घबरा कर बैठ गया और दिन के अंत तक स्तब्ध मौन होकर वहीं पड़ा रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि परमेश्वर के नगर में परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन के बारे में इतना कम जानते हैं। कुछ समय बाद परमेश्वर ने एक प्रतिभाशाली योजनाकार और आयोजक को खड़ा किया जिसका नाम नहिमिया था। जब वो यरूशलेम में आया तो उसने देखा कि उस नगर में कोई सुरक्षा नहीं थी और परमेश्वर ने उसके मन में डाला कि वो फिर से शहरपना को बनवाए। यरूशलेम के पुनर्निर्माण की कहानी इस बात का एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर अपना कार्य पूरा करने के लिए लोगों के विभिन्न वरदानों को एक साथ लाते हैं। परमेश्वर ने एक इमारत बनाने वाले, एक बाइबल शिक्षक और एक रणनीतिक योजनाकार का उपयोग किया और साथ में परमेश्वर के लोगों ने महान चीजें हासिल की। एजरा के सामने ऐसे लोगों के समुदाय को बाइबल सिखाने की चुनौती थी जो सोचते थे कि वे प्रभु को जानते हैं परंतु वे परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत कम जानते थे। वे लोग जिन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष संस्कृति में अपना जीवन व्यतीत किया था उन्हें एक ऐसे उपासक समुदाय में कैसे डाला जा सकता था जो प्रभु से प्रेम करे और उसकी आज्ञा माने। एजरा की रणनीति पूरे समुदाय को लगभग 50,000 लोग सार्वजनिक चौराहे पर इकट्ठा करने की थी। जब वे इकट्ठा हुए, उन्होंने एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहुआ ने इज़राइल को दी थी उसकी पुस्तक ले आओ। 50,000 लोग एक अनुरोध कैसे कर सकते हैं? वे जप करते हैं। यह भीड़ परमेश्वर के वचन के लिए एक बड़ी भूख के साथ इकट्ठा हुई और घटनाओं के घटित होने के लिए अधीर होते हुए वे चिल्लाने लगे, हमें बाइबल चाहिए, बाइबल निकालो। एजरा के लिए शास्त्र को बाहर लाना और इस विशाल भीड़ को परमेश्वर का वचन सिखाना बहुत खुशी की बात रही होगी। तब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया, यानी उनमें बच्चे भी शामिल थे। बच्चों को ऐसे माहौल में लाना एक शक्तिशाली बात है, जहां वे बड़ों को आराधना करते हुए और परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेते हुए देखते हैं। भीड़ उम्मीद से देख रही थी और जब एजरा ने पवित्र शास्त्र खोला तो लोग खड़े हो गए। तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। 1000 वर्ष बीत चुके थे जब परमेश्वर ने मूसा को अपना वचन दिया था, परंतु जब पवित्र शास्त्र खोला गया और समझाया गया तब लोगों ने समझा कि परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं। जब उन्होंने इस पुस्तक को सुना तो वे जान गए कि वे किसी मनुष्य की बातें नहीं सुन रहे थे, वे परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। ध्यान दे, एजरा ने परमेश्वर का नया वचन सुनने के लिए सीने पर्वत की यात्रा नहीं की, उसने व्यवस्था की पुस्तक खोली जो कि 1000 वर्ष पुरानी थी, यह विश्वास करते हुए कि जब परमेश्वर का वचन खोला जाता है तो परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है। एजरा का प्रचार बाइबल के पाठ से शुरू हुआ। उन्होंने उस संदेश को समझाया जो पहले ही दिया जा चुका था। परमेश्वर ने अपने वचन को आशीषित करने की प्रतिज्ञा की है, इसलिए प्रचारक का कार्य अपने शब्दों को परमेश्वर के वचनों से भरना है ताकि परमेश्वर के लोग आशीषित हो। एजरा को अपने कार्य में लेवियों द्वारा समर्थन मिला। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि लेवी भीड़ में बिखर गए थे। एजरा व्यवस्था का एक भाग पढ़ता और उसका मतलब समझाता, तब लेवी अपने आसपास के लोगों को छोटे छोटे पारिवारिक समूहों में इकट्ठा करते थे और पूछते थे कि क्या उन्हें समझ में आया कि क्या पढ़ा गया था। जब हर कोई समझ कर तैयार हो जाता तब एजरा आगे पढ़ना जारी करता। एजरा के प्रचार और इस छोटे समूह की स्थापना के बीच सीधा संबंध था, जिसमें लोगों को प्रश्न पूछने और परमेश्वर के वचन को लागू करने का अवसर मिला। बाइबल को पढ़ना, समझाना और उसे लागू करना एजरा की परमेश्वर के लोगों के निर्माण के लिए केंद्रीय रणनीति थी। एजरा ने जैसे ही परमेश्वर की व्यवस्था पढ़ी, लोग विलाप करने लगे और रोने लगे, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे उस चीज से कितने दूर थे जिसे बनने के लिए परमेश्वर उन्हें बुला रहे थे। तब एजरा, नहिमिया और लेविया ने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। जब आप परमेश्वर का वचन खोलेंगे तो आप अपने जीवन में ऐसे पापों की खोज करेंगे जो आपने पहले नहीं देखे थे, और जो बात परमेश्वर के हृदय को दुखी करती है वो आपके हृदय को भी दुखी करेगी। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी अधिक तेज है। ये छेदता और काटता और घाव करता है। परमेश्वर का वचन आपको पाप का बोध कराएगा, परंतु परमेश्वर का उद्देश्य आपको वहां छोड़ना कभी नहीं है। पाप का बोध हमेशा अंत का एक साधन होता है, और अंत यह है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह की गहरी सराहना करने लगते हैं। इसलिए नहमिया ने कहा, आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। ध्यान दीजिए कि हमारी शक्ति परमेश्वर के आनंद में निहित है, न कि हमारी। परमेश्वर अपने आप में परम प्रसन्न है, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। एक अप्रसन्न परमेश्वर के साथ संगति में कोई आनंद नहीं हो सकता। यदि आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपकी ओर सदा के लिए चिरे रहेंगे, तो आप उनके साथ संगति करने के लिए आकर्षित नहीं होंगे। दुखित व्यक्ति के साथ कौन चलना चाहता है? यदि आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपकी ओर सदा के लिए चिरे रहते हैं, तो जब भी परमेश्वर आपके निकट आएंगे, आप छिप जाएंगे। परंतु जब आप जानते हैं कि परमेश्वर धन्य है, कि वे अपने आप में परम आनंदित है, तो आप उनके साथ चलने के लिए आकर्षित होंगे। जब आप यह करते हैं, तो वो आनंद जो परमेश्वर में है, वो आप में और अधिक बढ़ता जाएगा। दूसरे दिन प्रत्येक परिवार के मुखिया एकत्रित हुए, बाइबल को फिर से पढ़ा गया और उन्हें व्यवस्था में यह लिखा हुआ मिला कि यहोवा ने मूसा के द्वारा ये आज्ञा दी थी कि इजरायली सातवें महीने के पर्व के समय झोपड़ियों में रहा करे। इस त्योहार में प्रत्येक परिवार शाखाओं से झोपड़े बनाकर उसमें 7 दिनों तक रहा करते थे। ये त्योहार लोगों को याद दिलाता था कि कैसे परमेश्वर ने उनके पूर्वजों को रेगिस्तान में रखा था। यह इस बात को भी याद दिलाता था कि इस दुनिया में सब कुछ अस्थाई है, और अब्राहम की तरह वे एक स्वर्गीय शहर की तलाश कर रहे थे। मुझे उनकी प्रतिक्रिया की सहजता पसंद आई। उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना और उसका पालन किया। अंततः सब लोग अपने अपने घर की छत पर और अपने आंगनों में और परमेश्वर के भवन के आंगनों में और जल फाटक के चौक में और एप्रेम के फाटक के चौक में झोपड़ियां बना ली। परमेश्वर के वचन के प्रति इन लोगों की आज्ञाकारिता संक्रामक थी। सारी मंडली झोपड़ियों का निर्माण करके उनमें रहने लगी। उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। यह बड़ा आनंद आपका होगा जब आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होंगे। परमेश्वर का वचन हमें हमेशा हमारे पापों के लिए दीन करेगा। परमेश्वर के अनुग्रह और दया को देखने के लिए हमें ऊपर उठाएगा और हमें आज्ञाकारिता के जीवन में ले जाएगा, जिसमें हम महान आनंद पाएंगे। नहमिया के समय से लगभग 500 वर्ष बाद यीशु झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम आए, और पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यदि आप प्यासे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अभी तक शांति, संतुष्टि और आनंद नहीं मिला है जिसकी आपको तलाश है। यीशु का निमंत्रण आपके लिए है। वो अपने आप को फव्वारे के समान बताते हैं और कहते हैं, मेरे पास आकर पियो। विश्वास एक अटूट फव्वारे से पीने जैसा है। ये वो माध्यम है जिसके द्वारा आप मसीह और वो सब कुछ प्राप्त करते हैं जो वो प्रदान करते हैं। तो आइए हम देखें कि आज हमने क्या सीखा। पवित्र शास्त्र में मानव जीवन को बदलने और पूरे समुदाय को नया रूप देने की शक्ति है। जब परमेश्वर का वचन सिखाया जाता है तो परमेश्वर की वाणी सुनाई देती है। पढ़ी और लागू की गई बाइबल हमारे पापों को उजागर करेगी और परमेश्वर के अनुग्रह को प्रकट करेगी। जब यह पश्चाताप और आज्ञाकारिता की ओर ले जाएगा तो आप बड़े आनंद अनुभव करेंगे।